मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 8 मई 2020 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से हम लोग एक विषय पर बात करते आ रहे हैं और उस विषय को अगर हम एक नाम देना चाहें तो वह दिमाग के खुलेपन को कैसे हासिल करें। बहुत विस्तार के साथ इस पर मैंने बातें की हैं और इस स्टेज पर आकर सच पूछिए तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहने को कुछ विशेष रह नहीं गया है। इससे पहले मैंने दो द्वारपाल के बारे में आप सबसे बातें की थी, दंभ और अवधारणा, और मुझे लगता है कि दंभ और अवधारणाओं के बारे में आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इससे पहले इस विषय पर मैं काफ़ी बातें कर चुका हूं और बहुत विस्तार से बातें कर चुका हूं, और चूंकि मेरे बहुत से ऐसे प्रिय श्रोता होते हैं जो लंबे समय से इससे जुड़े हुए हैं, इसीलिए अगर मैं दंभ और अवधारणाओं के बारे में बात करना शुरू करूं तो हो सकता है कि उनके मन में थोड़ा सा इरिटेशन पैदा हो कि सर इसी विषय पर कितनी बार बातें करेंगे। लेकिन ये दोनों ऐसे तत्व हैं, कह लीजिए हमारे दिमाग के, हमारे इमोशंस के, हमारे विचारों के, जिनको आप सब बहुत गहराई से महसूस करते हैं, उनके परिणामों को हम सब भुगतते भी रहते हैं और भुगतने के बाद हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार, अब ऐसा नहीं करेंगे, अपने को संभालेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये होता है कि जैसे पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है, ठीक उसी तरह से हमारे दिमाग में भी एक ढलान बनी हुई है और फिर से हमारा जो दिमाग है ये दंभ और जो अवधारणा की जो ढलान है उधर लुढ़क करके और फिर से हमें गड्ढे में डाल देता है। हाँ, लेकिन जो लोग सतर्क रहते हैं, लगातार अलर्ट रहते हैं, आत्म समीक्षा करते रहते हैं, धीरे 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 वो अपने इस ढलान को पहले समतल में बदलते हैं और इसके बाद चढ़ान में बदल देते हैं। तो फिर दंभ कितना भी दम लगा ले, अवधारणा कितनी भी ताकत लगा ले, फिर वो ऊपर नहीं चढ़ पाता। तो सच पूछिए तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इसके लिए जो ढलान उपलब्ध कराई है उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। नो डाउट कि हमारी संस्कृतियों ने हमारे अंदर कुछ ऐसे तत्व डाल दिए हैं जिसकी वजह से ये ढलान ऑटोमेटिक रूप से बन गई है। अब उसका तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर हम सतर्क रहें, अपना आत्मविश्लेषण करते रहें और अगर हम ये संकल्प ले लें कि नहीं इससे मुक्ति पानी है, तो दोस्तों मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप इससे पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं, हो भी सकते हैं। संत जो महात्मा हुए हैं वो आप कह लीजिए कि पूरी तरह से इन सबसे मुक्त व्यक्ति ही हैं, लेकिन ये जरूर है कि आप इसे काफी कुछ सीमा तक कम करते करते उस स्थिति तक ले जा सकते हैं जहां यह आपके लिए नुकसानदेह नहीं रह जाएगा, आपको मानसिक त्रास नहीं पहुंचाएगा और बड़े कंफर्टेबल सिचुएशन में आप रहने लगेंगे। यहां तक आप आ सकते हैं, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। तो दोस्तों, चूंकि इस पर काफी बातें हो चुकी हैं तो अब मुझे लगता है कि इसे यहीं समाप्त करना चाहिए। आज मैं आपसे, चूंकि हम विचारों के बारे में ही बातें कर रहे हैं, भावनाओं के बारे में ही बातें कर रहे हैं, तो मैं आप सबके सामने एक जबरदस्त किस्म का जो मनोवैज्ञानिक मंत्र मैं इसे कहूंगा वह रखना चाहूंगा, साइकोलॉजिकल मंत्रास अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहें तो, मनोवैज्ञानिक मंत्र। देखिए मंत्र क्या है, कुछ नहीं, मंत्र शब्दों का अगर हम बोल रहे हैं तो, और पढ़ रहे हैं तो अक्षरों का एक समूह है ना। मंत्र और कुछ भी नहीं है, चाहे हम बोल रहे हैं ध्वनियों का समूह है, पढ़ रहे हैं तो वो अक्षरों का समूह है, वो समूह है। लेकिन वह ऐसा समूह है जिसमें जबरदस्त शक्ति छिपी हुई है, लेकिन ये शक्ति सामने आएगी कैसे दोस्तों? जैसे एक एटम बम है, उसमें कितनी शक्ति छिपी हुई है सोच करके देखिए, है ना, कितना ब्लास्ट एक्सप्लोजन कर सकती है वो, लेकिन क्या वो अपने आप कर सकती है? उसमें जो शक्ति छिपी हुई है उसे हमें एक्सप्लोड करना पड़ेगा, या यूं कह लीजिए कि उसका हमें एक्सप्लॉयटेशन करना पड़ेगा, उसके लिए हमें गतिशील होना होगा, एक्शन करना पड़ेगा। तो मंत्रों के साथ भी बिल्कुल यही है। मंत्रों को कहा जाता है ना कि मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, शब्द तो हैं, लिखे हुए हैं, हम जप भी कर रहे हैं, तो जो हम जप करते हैं, जप करने का मतलब भी यह होता है कि करते 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 हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से बैठ जाएं कि वह एक्शन में हमें कन्वर्ट कर दें, कि नहीं भैया बहुत जप गए, वो तो दिमाग में, सो तब वही बात, जागो तब वही बात, सोचो तो वही बात, यार अब इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हम करने लगते हैं। तो मंत्र अगर हमें करने की ओर प्रेरित कर देते हैं तो ये मान करके चलिए कि चाहे वो सामान्य सा वाक्य क्यों ना हो, वह मंत्र बन जाता है हमारे और आपके लिए, तो मंत्र है। जिस भी वाक्य से हमारे जीवन में जबरदस्त किस्म का सकारात्मक बदलाव आ गया है वही हमारे लिए मंत्र है। तो दोस्तों, मैं आज आप सबके सामने एक खूबसूरत प्रार्थना रखने जा रहा हूं। बहुत ही छोटी सी प्रार्थना जिनको करने वाली है रेनहोल्ड निबुहर। ये जर्मन की विचारक रही हैं, सन 1800 के आसपास इनका काफी नाम था और इन्होंने एक बड़ी प्यारी सी किताब लिखी है। देखिए उसका नाम ही क्या है, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस किताब का नाम ही है, कॉमन सेंस। इन्होंने एक बहुत सुंदर प्रार्थना लिखी है। देखिए प्रार्थना तो वही है, हम भगवान से करते हैं, गॉड से करते हैं, जिसके जो भगवान है उससे हम करते हैं। और भगवान का मतलब है सर्वशक्तिमान। हम ये मान करके चलते हैं कि इससे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है, और इससे हम जो कह रहे हैं वो हमारे लिए वो कर देंगे या हमें दे देंगे, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, उसी को हम भगवान कहते हैं। तो अब देखिए कि इस प्रार्थना में कहा क्या गया है, ये किस तरह की प्रार्थना है। दोस्तों इसे केवल सुनिएगा मत और केवल समझिएगा भी मत, है ना, इसे आप आत्मसात कीजिएगा, अपने हृदय के अंदर उतारने की कोशिश कीजिएगा, है ना। कोई चीज जब आत्मा में उतरती है तो फिर उसकी तो बात ही और हो जाती है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, है ना। हे भगवान, हे भगवान, जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते उनको स्वीकार करने की हमें शक्ति देना। मैं दोहरा रहा हूं, हे भगवान, जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते उनको स्वीकार करने की हमें शक्ति देना, और जिन चीजों को बदलना चाहिए उन्हें बदलने का साहस दो। जिन चीजों को बदलना चाहिए उन्हें बदलने का साहस दो, और ऊपर दी गई दोनों चीजों का अंतर पहचानने की समझ दो। किन चीजों को बदलना है, किन चीजों को स्वीकार करना है, पहले करने से पहले तो हम उसे समझना चाहेंगे ना कि इसके साथ क्या करना है, तो उसकी समझ भी हमें दो। दोस्तों अब इस प्रार्थना को मैं एक साथ पढ़ रहा हूं। हे ईश्वर, हे भगवान, जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते उनको स्वीकार करने की हमें शक्ति दो। हे ईश्वर, जिन चीजों को बदलना चाहिए उन्हें बदलने का हमें साहस दो, और हे ईश्वर, और ऊपर दी गई इन दोनों चीजों का अंतर पहचानने की हमें समझ दो, बुद्धि दो, या यूं कह लीजिए विवेक दो, ताकि हम उन्हें पहचान करके और फिर उसके अनुकूल उसके साथ व्यवहार कर सकें। तो दोस्तों ये जो प्रार्थना है बड़ी खूबसूरत प्रार्थना है, इस पर आप सब थोड़ा सा मनन चिंतन कीजिएगा और आप पाएंगे कि इसके केंद्र में अनुकूलता का ही सिद्धांत है। या तो अनुकूलता का सिद्धांत है, हम उसको स्वीकार कर लें, अगर हम उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे तो फिर उसे बदलें, राइट। और लेकिन कौन सा बदलना है और कौन सा स्वीकार करना है, ये हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उल्टा करने लगे कि जिसको बदलना चाहिए उसे स्वीकार कर रहे हैं और जिसे स्वीकार करना चाहिए उसके बदलने में लगे हुए हैं। कितनी खूबसूरत प्रार्थना है दोस्तों। मुझे लगता है कि ये जो प्रार्थना है अपने आप में एक तरह से मनोवैज्ञानिक मंत्र की तरह है, जो हमें जबरदस्त रूप से बहुत ही मध्यम मार्ग के साथ गौतम बुद्ध ने जो कहा, अपनी यात्रा, जीवन की यात्रा करने की राह दिखाता है। तो दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। जैसा कि मैं हमेशा शायद हर शुक्रवार को ये बात दोहराता हूँ, आज फिर से दोहराना चाहूँगा कि आप सब अपना अपना ख्याल रखें, साथ ही अपने लोगों का ख्याल रखें। जो निर्देश हैं हेल्थ को लेकर के उनका पालन करें, स्वस्थ रहें। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।